SBS हिंदी के सुनने वालों को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। भारत में 5 राज्यों में कुल 690 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 10 फरवरी से शुरू होंगे और 7 मार्च को समाप्त होंगे। मतगणना 10 मार्च को की जाएगी। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए 7 चरणों और मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। बाकी 3 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में मतदान किया जाएगा। इन चुनावों में कुल 18 करोड़ 34 लाख मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार होगा। चुनावों की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सब दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों की जानकारी देना लाजमी होगा।
On mandatory publicity of criminal antecedents. Candidates with criminal antecedents are required to publish information in this regard in newspaper and through television channels on 3 occasions during the campaign period. Besides this, it is also mandatory for political parties to upload on their website at the home page detailed information regarding individuals with pending criminal cases who have been selected as candidates. Along with the reasons, the political party will have to give the reasons as to why this particular candidate has been selected and no candidate without any criminal antecedent was selected and benevolence is not the criteria for the same. And the details will be published within 48 hours of the selection of the candidate and not prior to 2 weeks before the first date of filing of nomination as was done earlier.
राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रबंध किए हैं, जिनमें सभी चुनाव से संबंधित अधिकारियों को टीके की बूस्टर डोज दिया जाना शामिल है।
कमीशन हैज डायरेक्टेड दैट ऑल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डिप्लॉयड फॉर इलेक्शन ड्यूटी शैल बी डबली वैक्सीनेटेड। सो ऑल द ऑफिशियल्स हु विल बी ऑन द इलेक्शन ड्यूटी विल बी डबली वैक्सीनेटेड। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ईसीआई द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज इशूड ऑर्डर्स ऑन 8 फरवरी 2021 that all election officials and employees will be treated as a frontline workers and all eligible officials shall be given a precautionary booster dose accordingly. So these persons will also be given a booster dose, the precautionary dose also. With this, my all polling officials who are on the poll duty will be fully safe. So I have spoken that my booths are safe because my booths are fully sanitized. And all provisions of the gloves, sanitizer and everything is there. And here are the polling officials who are the safe.
इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने चुनावी रैलियों, सभाओं और यात्राओं पर भी 15 जनवरी तक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। श्री चंद्रा ने इस विषय में जानकारी दी।
The commission has decided that no road show, पदयात्रा, साइकिल, बाइक व्हीकल रैली एंड प्रोसेशन शैल बी अलाउड till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. Commission shall subsequently review the situation considering the situation of the pandemic and issue further instructions accordingly.
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,60,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जो पिछले 224 दिनों में सर्वाधिक हैं। कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अलावा कैबिनेट सचिव, गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव समेत कई आला अधिकारियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य सचिव द्वारा संपूर्ण भारत के बारे में प्रेजेंटेशन देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति से निपटने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए, जैसे कि 15 से 18 वर्ष के किशोरों को मिशन मोड में टीके लगाना, जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना तथा संक्रमित लोगों की जीनोम सिक्वेंसिंग को बढ़ाना शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 19,474 मामले और दिल्ली में 22,751 मामले सामने आए हैं। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता भी कोरोना की चपेट में है। वहां 8,712 संक्रमित मामले मिले हैं। दिल्ली में सिर्फ संसद भवन में ही 400 से ज़्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में कुल 500 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 300 डॉक्टर केवल दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में संक्रमित हैं। शनिवार और इतवार को लागू संपूर्ण लॉकडाउन के बाद अपने संदेश में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती, मगर यह दिल्ली वासियों पर निर्भर करता है।
पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की जरूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना सबसे जरूरी है, मास्क पहनना सबसे जरूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं लॉकडाउन लगेगा, हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो, अगर जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो अभी थोड़े दिन, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है।
भारतीय मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोशल मीडिया पर की जा रही अभद्र टिप्पणियों और नीलामी के खिलाफ भारी बवाल मचने के बाद मुंबई और दिल्ली पुलिस ने इसमें संलिप्त कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सुल्ली डील ऐप के बनाने वाला और गिरोह का कथित सरगना ओमकारेश्वर ठाकुर भी शामिल है। इसे दिल्ली पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया। इस बारे में दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस विभाग के उपायुक्त KPS मल्होत्रा ने जानकारी दी।
देखिए, ये ओवरऑल सुली डील्स का कोड लिखने में, उसको बाद में फर्स्ट टाइम शेयर करने में, जैसे कि बुल्ली भाई में नीरज का रोल है, सिमिलरली रोल इसका सुली डील्स में। ये 25 साल का है और इसने, ये कंप्यूटर ग्रेजुएट है और इंदौर का रहने वाला है। ओमकारेश्वर ठाकुर की अभी इंटरोगेशन अभी चल रही है इस मैटर को लेके, और इसके जो लैपटॉप था जिसमें इसने सुली डील्स बनाया था वो हमें हमारे मिल चुका है, उसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन चल रही है, तो अकॉर्डिंगली जैसे जो सामने आएगा इन अ डे और टू विल बी इन अ पोजीशन। ये इन पर्सन नहीं मिले, ये जो भी इनकी मुलाकात हुई है वो सारी वर्चुअल वर्ल्ड पे हुई है, ट्विटर ग्रुप्स में, ट्विटर के चैट रूम्स में, और वैसे अपने जो उन्होंने चैट रूम्स बना रखे थे उसी में इनकी डिस्कशन हुई है, उसी में प्लानिंग हुई है और उसी में एग्जीक्यूशन हुई।
इसके पहले बुल्ली बाई ऐप बनाने वाले नीरज बिश्नोई को हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने इस अपराध में संलिप्त 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। इनके अलावा मुंबई पुलिस इस अपराध में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें उत्तराखंड की रहने वाली 19 वर्षीय लड़की श्वेता सिंह, उत्तराखंड का ही 22 वर्षीय मयंक रावल और बेंगलुरु में 21 वर्षीय इंजीनियरिंग का छात्र विशाल कुमार झा शामिल हैं। और आइए अब सुनते हैं खेल समाचार। 1-1 की बराबरी के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज अपने निर्णायक दौर में पहुंच गई है। केप टाउन में कल से शुरू हो रहे तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में भारत की ओर से विराट कोहली के खेलने की संभावना बनती दिख रही है। वे केप टाउन में नेट प्रैक्टिस करते हुए देखे गए। कोहली पीठ के दर्द की वजह से पिछले टेस्ट में बाहर थे। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह की माने तो भारत की सीरीज जीतने की संभावना प्रबल है, क्योंकि वर्तमान भारतीय टीम के पास बेहतरीन तेज और स्पिन गेंदबाज हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की वर्तमान टीम अब तक की सबसे कमजोर टीम साबित हो रही है। यदि भारत तीसरा टेस्ट जीतने में सफल हो जाता है तो यह उसकी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली श्रृंखला विजय होगी। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। SBS हिंदी सेवा की ओर से आप सबको मनन कुमार का पुनः नमस्कार।